यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जून 1991 को रात्रि लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
नारायण 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 राम 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 प्रपन्न पाल जाता है तो उसमें से ही कौन है एक अनुमुद्रा है कृष्ण है साम विष्णु ही रमा वसुदेव सुसंदेव कंसचार गुरुवर्धनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे वंशी विभूषित बराज अवनीर दास पीताम्बर आधर बिंब फलाधर पूर्णी सुंदर मुखा नारायण 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 विशाल गीता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं संक्षेप से। गीता के विस्तृत विवेचन करना मेरे काम पड़ा है, परंतु संक्षेप से बहुत कम पड़ा है, अभी कर रहे हैं। 3 अध्याय हुए हैं। श्री भगवान वाच कहते एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमद्येव विवस्वान मनवे प्राह मनवेक्षा कवे ब्रवीष एवं योगम विवस्वते प्रोक्तवान। ये जो योग है अव्यय अविनाशी योग, यो मैंने पहले विवस्वान को कहा था, सूर्य भगवान को। विवस्वान मनवे प्रहा मनुष्य ने विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु इक्ष्वा को मनु जी ने इक्ष्वा को कहा एवं परम्परा प्राप्त एवं राजस्य। ये योग है परंपरा से प्राप्त हुआ, राजस्य लोग जानते हैं। सकाले में मैसा योग नष्ट तो बहुत काल बीत जाने से वो लुप्त प्राय हो गया। नष्ट कहते हैं नष्ट अभाव नहीं, लुप्त हुआ उसको जानकार कम रहे। पहले इसको अव्ययम कहा, प्रोक्तवानम अव्ययम अव्यय योग है, और यहाँ कहते योगो नष्ट, तो नष्ट का अभाव नहीं है, अविनाशी का नाश नहीं होता, नाश होता अविनाशी नहीं होता, तो योग अव्यय है अविनाशी है। नष्ट का रस आदर्श नहीं रहा तो उसे बनता है तो लुप्त प्राय हो गया, इसको लोग जानते नहीं थे बहुत समय से। सवाय मैं प्रो योग अप्रोक्त पुरातन, वही है योग जो पुरातन है वो मैंने कहा, क्योंकि भक्तों से मैं सखा दी, तू मेरा भक्त भी है सखा भी है, ये तो उत्तम रहस्य, ये उत्तम रहस्य की बात है। तो अब ये योग कौन सा है भाई? योग शब्द है गीता में बहुत तरह से आता है, हमने भी योग की 3 तरह से देखी है, युद्ध योग है, युद्ध समाधो है, युद्ध संयम है, 3 धातु आते हैं, तीनों से योग बनता है। तो योग यहाँ गीता की क्या है, गीता का योग यहाँ पर ये कर्म योग है। ऐसा थे बीता स्थान के बुद्धि योग है तमाम सुनो, वहां से योग के विषय में कर्म योग का विवेचन आया। तो ये पुरातन योग है, पुरातन है इनको मैंने कहा, तू मेरा भक्त है और सखा भी है, भक्ति होने से भी तू अधिकारी है और मेरा प्रिय सखा है, ये तो उत्तम रहस्य, ये उत्तम रहस्य है। तो उत्तम रहस्य योग के लिए भी कह सकते हैं, परंतु मैंने पहले कहा था और मैं ही तेरे को कह रहा हूँ, ये रहस्य की बात है, हरे को कहने की नहीं है। अपनी बात साफ साफ कह देना, हरे के सामने नहीं कहा जाता। तू भक्त है और सखा, इस बात कहता हूँ। तब अर्जुन पूछते हैं, अपरम भक्तो जन्म परम जन्म वस्वसा, आपका तो जन्म अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। कथम एतद् विजानीयान् तुमादौ प्रोक्तम् आदौ तुम प्रोक्तवान् इति एतद् कथम विजानीयान्। आपने आदि में सूर्य नारायण से कहा था तो मैं कैसे जानूं? ये बात समझ में नहीं आती। आप तो अभी प्रकट हुए और सूर्य का तो बहुत पहले जन्म हुआ। अपरम बहुत जन्म परम जन्म में बस होता तो मेरे समझ में नहीं आती। इसके दो अर्थ करते हैं, एक ये समझ में नहीं है अर्थ, एक कहते हैं कि आपने पहले कहा तो ये बात कैसे मानने में आ सकती है महाराज, अब तो अभी जन्म लिया वो पहले कहा है, तो ये आपसे भी ये नहीं है, मैं कैसे जानूं? तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे बहुत से जन्म बीत हुए बीत गए, तेरे भी बहुत जन्म हुए, सर्वानी उन संपूर्ण जन्मों को मैं जानता हूँ, न तुम देखा परंतप अर्जुन तू नहीं जानता, मेरे को पता है, याद है कहाँ कहाँ मैं जन्म लिया, कहाँ कहाँ तेरे जन्म लिया है, तान्य हूँ वेद सर्वाणी सबको जानता हूँ, तेरे मेरे सब जन्मों को जानता हूँ, न तुम देखा परंतप। तो मतलब आप भी जन्म लेते हैं हम भी लेते हैं, आप में हमारे फर्क क्या हुआ? जो भी सन नब्बे आत्मा भूता हम ईश्वरों के सन प्रकृति उसमें अधिष्ठा है संभव में आत्म आया अजो किसन अज रहता हुआ मानो जन्म रहता हुआ जन्म रहित रहता हुआ और अव्यय आत्मा आत्म माया संभव में अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। दूसरे जन्म होते ऐसे नहीं होते, आज अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही मेरे में कोई विकृति नहीं आती। कहीं जन्म लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि यह उस मेरा कर्माफ से जन्म हो गया और मैं आज नहीं रहा, अविनाशी नहीं रहा, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर नहीं रहा, ऐसी बात नहीं होती। अपनी प्रकृति को अधिष्ठ करके आत्माया समय अपने शक्ति से ही मैं जन्म प्रावस्था देता हूँ। जन्म कब लेते हैं महाराज? यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जिस जिस काल में धर्म की हानि होती है और अभ्युत्थानम अधर्म से अधर्म का अभ्युत्थान होता है अब बढ़ जाता है तदात्मानं सृजामि, उस समय में अवतार लेता हूँ आत्मानं सृजामि अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो कोई कह सकते है कि अभी बहुत पाप बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही है, ऐसे मौके में अवतार क्यों नहीं लेते भगवान? ऐसा बताते हैं कि ये अवसर होता तो अभी जो अत्याचार होता है अनाचार होता है बहुत अधर्म की प्रवृत्ति हो रही है, धर्म की ग्लानी हो रही है, नाश हो रहा है, तो ये भगवान अवतार रह जैसा नहीं आया है समय। कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, त्रेता में ऋषि मुनियों को मार कर खा गए, हड्डियों को ढेर लगा दिए, आज गायों के तो ढेर लग गए, गायों में आती है वो तो लोग सूझ रहे हैं, परंतु ब्राह्मण अभी तक बैठा है, साधु बैठा है, ये बचे हुए हैं अभी कलयुग के समय ये रह जाए ये बात नहीं है। थोड़े धर्म का स्थान है हिंदू धर्म में, हिंदू साहित्य में उनका नाश हो रहा है, अरे हिंदू स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ही संतान का नाश कर रहे हैं, संतानों को संख्या घट गई, 40-50 करोड़ संख्या घट गई है और फिर घटती चली जा रही है, और ये हमारी बहना मानती है नहीं, भाई मानते है नहीं, क्या करें, कहां रोए किसको कहें, ऐसा बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। परंतु कलयुग में जैसा होना चाहिए उससे अभी बहुत कम हुआ है। कलयुग में तो त्रेता में हो गया, ऋषियों को खा गए, तो कलयुग में कितना होना चाहिए, इस वास्ते अभी वो समय नहीं आया है। तुम्हारा ऐसा समय आप प्रकट होते हो तो क्या वो समय आपको अच्छा लगता है? धर्म की हानि हो जाए, अधर्म की वृद्धि हो जाए, तब अपने को प्रकट करता हूँ, फिर अच्छा नहीं। परिचरण आए साधु ना, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्ट काम विनाश आए, दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होगा। एक युग में सतयुग से द्वापर कली, जिस जिस वक्त में ऐसी है जो मर्यादा है युगों की, उस मर्यादा का उल्लंघन करके पाप हो जाते हैं, मैं प्रकट करता हूँ। तो युगे युगे का मतलब प्रति युग में एक जन्म नहीं, एक युग में कई बार मैं ले लेता हूँ, आवश्यकता नहीं प्रसिद्ध नहीं भी लेता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। ये प्रयोजन है भगवान के अवतार का, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। साधुओं की रक्षा क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा है उसका ये नहीं कि साधु जीते रहे, ये मर न जाए, ये रक्षा नहीं। साधुओं का जो धर्म है उसी रक्षा, शरीर तो नष्ट होने वाला है कि धर्मात्मा और पापात्मा और साधु और फिर ब्राह्मण, शरीर नाश हो, शरीर का नाश होना नाश नहीं है। परित्राण आए उनकी रक्षा करने के लिए, रक्षा में भी एक विचित्र अर्थ है। भक्त होते हैं मेरे साथ खेलना रहना चाहते हैं, तो वो मैं मौका देता हूँ भक्तों को अवतार लेकर के, नहीं तो धर्म का उत्थान करना, अधर्म का नाश, दुष्टों का विनाश भगवान इच्छा मात्र से कर देते हैं, इनको अवतार लेना नहीं पड़ता। पर भक्त है वो मेरे साथ में खेलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो अवतार लेकर ही कर सकते हो, बिना अवतार नहीं। ये काम तो बिना अवतार हो जाते हैं, और हो ही रहे। अब भी धर्म का स्थापन है, अब भी दुष्टों का विनाश होता है, सज्जनों की रक्षा होती है, पर असली संतों की रक्षा साधना उनके भाव है उसके अनुसार प्रकट होकर मैं लीला करता हूँ, वो एक असली भाव है, उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ। परंतु एक बात और है, जन्म कर्म में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण लोगों की तरह नहीं है। जन्म में आज अविनाशी ईश्वर होता हुआ ऐसा होता हुआ दूसरा नहीं जन्म लेता, आज होता हुआ जन्म नहीं जन्म ही लेता है। अविनाशी होता हुआ अंतर ध्यान हो जाए नहीं, मरते हैं और भूतों के ईश्वर में है नहीं। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, मन मेरा प्रकट होना हो तो अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का भी शरीर दिव्य है, परंतु भगवान के लिए भगवान की तरफ देखे तो नहीं। देवात्म स्वरूप से नित्य दर्शन कांक्षा, देवता भी इस रूप का देखना चाहते रहते हैं, उनको भी दर्शन नहीं होता। ऐसा मेरा दिव्य रूप होता है, अलौकिक रूप है, सदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, रामायण में आया है, सत्यनमय घोषा पुरुषोत्तमस्य नारायण रस्य महिमा नहिमान में मधुराचार्य अपनी गूढ़ा दीपिका में लिखते हैं, सचित सुख ही बबूसा, सचित आनंद, ये भगवान का शरीर है। हमारा तो मलिन शरीर होता है, भगवान का मलिन दिव्य होता है, विलक्षण होता है, सचित आनंद रूप होता है। तो जन्म ऐसा होता है, कर्म भी दिव्य होता है, भगवान की लीला कहने से अंधकार दूर होता है, लीला के कार्य से भूमिक ग्रंथि से भूली जा देना। जो भगवान की लीला कहते हैं वे संसार में बड़े भारी दान करने वाले हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, तो वो लीला दिव्य होती है, अलौकिक होती है, अज्ञान अंधकार दूर करती है। राम जी के विवाह में संत गए हैं, महात्मा लोग गए विवाह के समय, और भगवान से घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं दूल्हा बने हुए, उनके जावक जुत पद कमल सुहाई, जावक लगा हुआ, यावक होता है, जिसको अलता कहते थे, अलता अलग संस्कृत अलग होता है, अलसा वो लगाया कभी मैं नवाता है पहले, अब मेहंदी लगाते हैं, अब तो न जाने क्या भ्रष्ट हो गए नकल ऊंट रंग से, तो बहुत नीची महान हत्या की बात, ऊंट के चमड़े को गाड़ करके उसका रंगता जिससे वो चिपक जाए, ऐसा ऐसा महान अशुद्ध चीज अपवित्र। पहले वो सब अलता लगाते थे, मारवाड़ में कहा था तेरे कूट अलतो कर दे सू अलतो, वो अलग काम का अलग काम का पद में ऐसा। तो दिव्य जन्म होता है तो भगवान के विवाह में चले जाते हैं, तो वहां पर संत महात्मा विवाह में संतों का क्या कहो, बिल्कुल नहीं। राम जी के विवाह में संत महात्मा आए, दुर्गा जी के चरणों में मन मन मधुपुर है जहाँ चाहे मन रूपी मधु भौर रहता है, तो भगवान की कोई लीला होती है उसमें की विलक्षण आनंद होता है नाम रस होगा। तो ऐसे मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इस दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है वो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो मामेति सौजन अर्जुन सह माम मेरे को प्राप्त होता है, मेरे जन्म कर्म के दिव्यता को जान ले। दिव्यता नाम अलौकिकता है, विलक्षणता है, देवताओं का भी नहीं, मनुष्य तो जन्म मलिन है ही, परंतु देवताओं का जन्म भी ऐसा नहीं। देवताओं को हम लोगों के शरीरों से दुर्गंध आती है, घृणा होती है, इतने दिव्य शरीर है, तेजस तत्व प्रधान होते हैं, तो भगवान को चिन्मय रूप होते हैं, सदा आनंदमय देह है तुम्हारी, ऐसी बात ऐसा मैं उतार लेता हूँ। बीत राग भय क्रोधा मन मया माऊ बासता, बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। ये जो ज्ञान है ना, जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान, अलौकिकता का ज्ञान जान लेना, ये बहुत महत्व की बात है। जैसे आत्मा नित्य है, आत्मा इसको नित्य जानना है, उसका इतना महत्व नहीं है, मुक्त हो जाते हैं। परंतु जन्म कर्म से मेरे दिव्य में ये हूँ इसको तत्व से जानता है, फिर जन्म लेता मेरे को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। परंतु मेरे जन्म को जानने वीत राग भय राग बैर क्रोध इस सब नष्ट हो जाते हैं, मेरे परायण हो जाए माम उपासना मेरे आश्रित हो जाए मन मया मेरे मय तन्मय हो जाते हैं, मेरे में एकदम मेरे मैं में फर्क नहीं रहता। बहु ज्ञान तपसा, ये ज्ञान रूपी तप है, जो जन्म कर्म के दिव्यता को जान लेना है, ये ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे भाव को प्राप्त हो गए, बहुत से प्राप्त हो गए, ऐसी मेरी विलक्षणता है। तो महाराज भी हुए और कि जो मेरा भजन नहीं करते उनका नहीं, परंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथे भजामि हम, जैसे मेरे शरण गुरु मेरा भजन करते हैं उनका मैं वैसे ही वजन करता हूँ, वो जिस भाव से मेरी प्रजा थे उसी भाव से मैं हूँ अपनाते हूँ, मेरे माता पिता माने तो मैं माता पिता बन जाता हूँ, और वे भगत कहते हम तो माता पिता है आप पुत्र से पुत्र बन जाता हूँ, मित्र चाहे तो मित्र बन जाता हूँ, गुरु चाहे तो गुरु बन जाता हूँ, और वे चाहे तो मेरा चेला बने मैं चेला बन जाता हूँ। ये था माम जैसे मेरे शरण हो गए जिस प्रकार से हो गए, रोने लग जाता हूँ मैं गुरु की रोना लग जाता हूँ, वे मेरे को प्रसन्न मैं भी प्रसन्न होता हूँ, जैसे मैं अवतार लीर करते वैसे ही मैं करता हूँ। क्यों मऊ वर्तमान वर्तन थे मनुष्य अपार प्रसानंदन, मनुष्य सबके सब प्रकार से मेरे रस्ते के अनुसार मऊ वर्तमान वर्तन थे मेरे रस्ते का अनुवर्तन करते हैं। तो जैसे मैं सबके साथ में प्रेम का एकता का उनकी भावना पूर्ण बरसाव करता हूँ, मनुष्यों को चाहिए ऐसा ही बरसाव करे, तो भगवान बरसाव करके दिखा देते हैं, बिना अवतार लिए लीला करके कैसे दिखाओ, सब काम तो कर देते हैं, करते ही है करते रहते ही है, पर जैसे रामावतार लेकर और उसमें लीला की तो मनुष्य को कैसे चलना चाहिए माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करे, भाइयों के साथ कैसा करे, स्त्री पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करे, शत्रुता रखने वालों के भी साथ कैसा बर्ताव करे, अंगद भूमि तो कैसे तासुहित हुई, काज हमार तासुहित हुई, सबका हित क्रियाओं में करते हैं। ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए भले बैर रखने वाला हो उसका भी हित सोचे, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसे हित चाहना चाहिए। इस बात का प्रचार करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ बता विश्वास करता हूँ सब लोग ऐसा करें। परंतु कांक्षंता कर्म नाम सिद्धि में यजंती है देवता, यहाँ कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं। हमारे को स्वर्ग मिले, हमारे को अमुक लोक मिले, अमुक विभूति मिले, ऐसा धन मिले, संपत्ति देवो मिले, ऐसे जो चलते है ना वे कांक्षंता कर्म नाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवता यजंती देवताओं का पूजन करते है। कर्म जा कर्म जन्य सिद्धि इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी हो जाती है, कर्म जन्य सिद्धि, परंतु भक्ति की बात है वो इससे जल्दी नहीं होती है, वो तो मैं देता हूँ तब होती है। मैंने चातुर्भरणी में ऐसे तुम क्यों करते हैं साहब, विशेष मनुष्यों के साथ ही पक्षपात, भगवान का 84 लाख जूनी में रहने वाले जीवों के प्रति दया है, परंतु मनुष्यों का पक्षपात है भगवान का, क्यों इस वक्त भगत हो जाते हैं, भगवान के प्रेम ही निकल जाते हैं, इस बात से मनुष्य मात्र की ओर विशेष दया है। कभी करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले कभी विशेष कृपा करके मनुष्य देते है। तो भाइयों बहनों ये मनुष्य मिला है भगवान की कृपा से, अब भगवान के वचन में लगाओ, इसको भगवान की तरफ ही लगाओ, और हत्या मत करो, पाप मत करो, महान महान भयंकर पाप है ये मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप सुनेंगे तो क्या करो, लाचारी की बात है, आप ऐसी कृपा करो जैसे भयंकर पाप मत करो। कर्म से सात चारों वर्ण मैंने रचे, गुण कर्म गुण और कर्म, उनके कैसे कैसे कर्म है और कैसे कैसे भीतर के गुण है, उनके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार मेरा श्रेष्ठ मृत्यु है। वो कि लोग कहते पसे पीछे वर्ण विभाग किया, ऐसा नहीं, भगवान कहे सात वर्ण मेरा श्रेष्ठ, मैंने पैदा किए चारों वर्णों में मैंने पैदा किया है। तस्य कर्ता, उनका कर्ता हुआ भी मेरे को अकर्ता समझो। अब जन्म की बात बताई है, अब कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हैं। वे सब करता हुआ भी मेरे को तो अविनाशी और अकर्ता समझो, मेरा लेप नहीं है, उन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। नमान कर्मान दिंपति न मे कर्म फले स्नेहा, कर्म फल स्नेहा नहीं है और क्यों मेरे को लिप्त नहीं करते, मैं निर्लेप नहीं करता हूँ। दूसरे जीव कर्म करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं, कर्मों से बंध जाते हैं, मैं निर्लेप होकर कर रहा हूँ, अविनाशी हूँ, जैसा करते रहता हूँ और अकर्ता का अर्थ करते जन जैसे अज अविनाशी ईश्वर रहता हुआ अवतार देता हूँ, ऐसे सब काम करते हुए मैं अविनाशी वैसा वैसा निर्लेप रहता हूँ, ये मनुष्यों को सिखाने के लिए। नमान कर्मा निलिम्बंती न मे कर्म फले स्नेहा, मेरे वो कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म फल की मेरे स्नेहा है, यदि मांग वो भी जाना थी, इस तत्व को कोई जान ले कर्म नाश बदले थे, वो कर्मों से बंधेगा नहीं, क्योंकि एक विद्या है ये कर्म करते हुए कर्मों से न बंधना निर्लेप रहना, ये विद्या कोई भी जान ले वो भी बंधेगा नहीं, उसको भी ये विद्या है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे मुमुक्षु भी, शास्त्र में आता है कर्म कब तक करना चाहिए, जब तक मुमुक्षा जागृत हो जाए, फिर साधन सहित कर्म सब त्यागे, विश्व भागे मुमुक्षा हो जाए तब तक भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृष्ण पूरे भी मुमुक्ष हो गए। पहले जो मुमुक्ष हुए हैं उन्होंने भी इस तरह इस तत्व को जान के कर्म किया। कुरु कर्म ही बता सुना, तुम कर्म ही करो, कर्म छोड़ने की इच्छा मत करो। जो छोड़ हुए पूरे ही पूर्व तो पूर्व वाले बड़े बड़े आचार्य उन्होंने ऐसे किया है, तुम भी कर्म ही करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब कहते हैं किन कर्म की वह कर्मी एवं ज्ञाता बताया था, कर्म को जानना एवं ज्ञाता के संदर्भ, तो कर्मों के रहस्य को जानकर कर्म करो तो ये कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। मुमुक्षु पुरुष कर्म करते हैं ऐसे जान करके, ऐसी युक्ति से करते हैं कि कर्म करते हुए कर्म न कर्म लिप्त न रहे, वो लिप्त नहीं होते, फंसते नहीं। इस वास्ते भाई तुम भी करो, तो महाराज कर्मों में क्या रहस्य है, तो अब यहाँ से कर्मों का विवेचन करते हैं भगवान। ये 16वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ये वर्णन है। तो कर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते, ठीक तरह से इनका निर्णय नहीं कर सकते। तत्व कर्म मैं वो कर्म कहूंगा जिसको जानने से तुम मुक्त हो जाए, कर्म कर्म करना इस विधि से। भगवान जोर देते कर्मणो भी बोधव्यम, कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, और बोधव्यं च विकर्मणा, विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, और अकर्मणस्य बोधव्यं, अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। क्यों महाराज, गाना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है, कर्मों का विवेचन विशेष नहीं आता है, भक्ति का विवेचन आता है, कथाएं मिलती है, ज्ञान की चर्चा मिलती है, ज्ञान करते हैं, पर कर्मों का रहस्य जानने वाले कम हो। अभी भगवान कहा है योगो नष्ट, योग नष्ट हो गया, कर्म योग नष्ट, परंतु लुप्त प्राय हो गया, जानने वाले लोग रहे नहीं। तो आज 5000 वर्षों से अधिक हुए, उस समय भगवान कहते हैं कर्म योग लुप्त हुआ तो उसे और लुप्त हो गया, और ही समय नीचा गिरा है, हमारे देखते देखते समय बहुत गिर गया, मनुष्य की भावना बहुत गिर गई। पहले इतना लोग विश्वासघात नहीं करते थे, अब झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात कितना कितना काम करते हैं, भोगों के लिए और रुपयों के लिए, देखो कोई पारावार नहीं है। ऐसी दशा हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी, ये जानते थे धर्म कर्मों को, तो वो कर्मों का तत्व जानना चाहिए, गहना कर्मों को वो तत्व बताने के लिए कहते हैं कर्मणी अकर्म या प्रसिद्ध, कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, ये थोड़ी सी गहरी बात है। सबुद्धिमान मनुष्य जो मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है वो, और कृष्ण कर्म करते हैं, सब कर्म कर दिया वो कृत कृत हो जाता है, कृत कृत ये प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञात तीन बात हो जानी चाहिए मनुष्य शरीर में, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे, ये मनुष्य शरीर को अधिकार दिया भगवान ने, तो उसी लिए फिर कोई कर्म बाकी नहीं रहता। तो बुद्धिमान मनुष्य मनुष्यों में बड़ा भारी बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान हो सयुक्ता वो योगी है, और कृष्ण कर्म का संपूर्ण कर्म कर दिया उसने, कर्म पूरा कर दिया, कर्म करना कोई बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, कृष्ण ज्ञात ज्ञात प्राप्त भी हो गया इस कर्म के जानने से। अब बात विचारिये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है, ये थोड़ा सा गहरा विषय है, मैं सुगम बात कहता हूँ। 9-10 तरह के अर्थ मैंने इसमें पढ़े है और सुने है, पर मेरे को अच्छा लगता है वो एक अर्थ ही कहता हूँ, क्यों ज्यादा क्यों थोड़ा सारा क्या मतलब है उसमें, बातों बिगलापन ही तत्व बहुत बहुत पढ़ने से बहुत करने से पूरा थूक बिलो रहा है कुछ नहीं। इस वास्ते बताता हूँ, मैंने जैसे संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, और उसके बाद जो हमारे को प्रिय लगा है, अच्छा लगा है वो करना। कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये खास बात, ये गहरी बात है। कर्म नहीं अकर्म या पशे और अकर्म नहीं कर्म, या कर्म में अकर्म देखे अकर्म में कर्म देखे, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, योगी है, वो सब कर्म करने वाला है। तो कर्म अकर्म क्या, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये न रखने से कर्म अकर्म हो जाते, वे कर्म बांधने वाले नहीं रहते। कर्म बनता है फल सकते नहीं बनते, फल में आसक्त हुए, पक्षपात हुए, स्वार्थ बुद्धि होती है, करते तो अभिमान होता है तो कर्म बांधता है, करते तो अभिमान भी नहीं, फल इच्छा भी नहीं, ममता नहीं, पक्षपात नहीं। शक्ति नहीं है, कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये न रखने से कर्म अकर्म हो जाते, वे कर्म बांधने वाले नहीं रहते। कर्म बनता है फल सकते नहीं बनते, फल में आसक्त हुए, पक्षपात हुए, स्वार्थ बुद्धि होती है, करते तो अभिमान होता है तो कर्म बांधता है, करते तो अभिमान भी नहीं, फल इच्छा भी नहीं, ममता नहीं, पक्षपात नहीं, केवल दुनिया के हित के लिए कर्म करता है, अपना कोई उस किंचन मात्र भी संबंध नहीं। ये कर्म में अकर्म देखना है। और अकर्म में कर्म क्या है कि अकर्म ना हो, कुछ भी नहीं करना, उसमें भी कर्म, अगर फलाशक्ति है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तो सब कर्म छोड़ दे और चुपचाप बैठ जा, तो भी कर्म होगा, उसका फिर जन्म होगा। अकर्म में भी कर्म होता है, क्योंकि फलाशक्ति है, कामना है, वासना है, ये भीतर रहती है, तो वो कर्म मुक्तिदायी नहीं होता, बांधने वाला होता है। तो कर्म में अकर्म, कर्म के होते हुए अकर्म हो जाए, कर्म बंधन कारक न हो, और अकर्म होने से कर्म, अकर्म होने पर भी कर्म हो, मानो निष्काम भाव पूर्वक कर्म होते, समझिए। कर्म नहीं अकर्म नहीं, तो कर्म करता हुआ भी, कर्म ही अभी प्रवृत्त हो भी नहीं किंचित करो तो सा, आगे भगवान बताते हैं 20वें श्लोक में, कर्म में अभी प्रवृत्त होना पर भी वो कुछ भी नहीं करता है। तो ये कर्म या अकर्म, ये प्रसिद्ध कर्म है, कर्म है, सब बुद्धिमान मनुष्य वो बुद्धिमान है, योगी है वो, संपूर्ण कर्म करने वाला है। जैसे सर्वे समारंभ, इसकी व्याख्या 5 श्लोकों में होती, कर्म में अकर्म की व्याख्या 5 श्लोकों में चलती है। यसे सर्वे समारंभ, जिसके सब आरंभ अच्छी तरह से आरंभ है, काम संकल्प है, कामना के संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। संकल्प वो होता है जिसमें सत्ता होती है, आसक्ति होती है, आग्रह होता है, ये मैं करूंगा, वो कर्म होता है। और इसके बिना, संकल्प बिना होता, वो कर्म अकर्म हो जाता है। तो जिसके समय आरम्भ है पर कामना के संकल्प से रहित शुद्ध कर्म है, वो कर्म दिव्य हो जाते। देखो जन्म तो दिव्य भगवान का है, मनुष्य का जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार होता है, तो दिव्य नहीं होता, परंतु कर्म दिव्य हो सकते हैं, जो कोई मनुष्य चाहे उसका कर्म हो जाता दिव्य, अलौकिक विलक्षण, उन कर्मों से लोगों का कल्याण होता है, दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, स्पर्श से दूसरों का हित होता है, स्वतः वो एक बहुत दिव्य रव हो जाता है। तो ये सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान रूपी अग्नि से वे कर्म दग्ध हो गए। जैसे कागज है, वो लोह पर रख दो, लोह तपेगा तो वो जल जाएगा, अक्षर पढ़ दो, अक्षर पढ़ने में आएंगे, हाथ से उठाओ तो कुछ निराग हुआ हुआ है। मूंद होती है रस से और जल जाती है तो आटा ऐसे ही दिखता है, आटा को दिख जाएगा, ऐसे जिसके कर्म दिखते हैं ऐसे ही, जैसे दूसरों को जैसे ही, पर उन कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं रहती, वे बिल्कुल बांधने की क्रिया से रहित हो जाते हैं, उन कर्मों में अलौकिकता, विलक्षणता, दिव्यता आ जाती है, दुनिया का कल्याण करने वाले हो जाते हैं। तबा वो पंडित बुधा, उसको बुद्ध पंडित भी पंडित कहते हैं, पंडित लोग भी उसको पंडित कहते हैं जिसके आरंभ मकाम संकल्प सटीक है। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत का भेजी बेला हो। त्याग करके संत महात्मा होते हैं उनको तो लोग समझ लेते हैं, परंतु गृहस्थ में रहते हुए जो जत उनको समझते नहीं, भेदी बेला हो, गृहस्थी संत का जानने वाला कम होता है। गृह सुपंडिता केचित केचित मूर्खे सुपंडिता, सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता। घर में पंडित होता है, घर वाले सब पूछते हैं, वालों को पूछ रहे हैं, इनके पूछने से हम काम करेंगे तो घर में वो पंडित है अपने अपने घर में। और कई कई मूर्ख मूर्ख है, सुपंडित मूर्ख मूर्ख सब समाज हो उसमें पंडित होते हैं, घर में ही नहीं, मूर्ख है सुपंडित। और सभा में पंडिता कैसे, कई कई उससे वृक्ष पंडित होते हैं, सभा में पंडित हो रहे, परंतु कैसे पंडित पंडित पंडितों में ही पंडित होते। समाह पंडितम बुधा, बुधा नाम पंडित भी उसको पंडित कहते हैं, सब काम करते हैं परंतु बंधन होता ही नहीं, वो वृक्ष पंडित है। कैसे करेंगे, त्यक्त्वा कर्म भला संगम नित्य तृप्तो निराशया, फल की आसक्ति का, फल की आसक्ति का त्याग करके त्यक्त्वा कर्म भला संगम नित्य तृप्त हो निराश है, नित्य तृप्त रहता है, कोई मन में भूख नहीं, कोई सहना नहीं, किंचित मात्र किसी से कष्ट प्राप्त, कोई संसार का संबंध नहीं, ऐसे होते निराश है, किसी का आश्रय नहीं, किसी की प्रसन्नता नहीं, किसी के ऐसा नहीं कि अधीन हो जाए, धन के जन के मनुष्यों के किसी का अधीन नहीं है, निराश है, आश्रय निराश्रय होते है, भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकर के निराश है, भगवान भी शासन मस्मान नहीं बचते, भगवान भी शासन उसे उठा लेते हैं, ऐसे निराश है। कर्मणि अभिप्रवृत्त, ऐसा होकर कर्मणि अभिप्रवृत्त है, अभी चारों तरफ से कर्मों में लगा हुआ भी नहीं केंद्रित करो, ये कर्म में अकर्म हो, ऐसा और कर्म करता है तो कर्म में अभी समंतरा प्रवृत्त अभी ठीक तरह से प्रवृत्त हो गया तो भी नहीं वो किंचित करो किंचित न करो करना होता ही नहीं, कर्म अकर्म हो गए, सर्वथा कर्म फलजनक नहीं हुए, बंधनकारक नहीं हुए, उनका फल नहीं होता, बांधने में फल नहीं, ऐसे हो गए निराश तो आत्मा सब। और दूसरे इच्छा नहीं है मन में, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, भोग की मोक्ष की कोई नहीं है, चित्तात्मा शरीर इंद्रिया मन ये सब जैसे बस में है, चल तो सर्वोपरि भोग सामग्री का कोई संग्रह नहीं है, निर्वाह कैसे होगा, कब निर्वाह कैसे होगा, इसमें कोई परिग्रह नहीं है, संग्रह करने वाला परिग्रह है, अपने रखे कितना हमारे चाहिए काम आएगा, चल सर्वोपरि है, सारी रंग केवल करूँ, केवल शरीर निर्वाह के लिए करूँ, कैसे भोजन कर लिया, पानी पी लिया, निर्वाह के लिए और कोई कर्म नहीं है, तो कैसा होता हो, सारी रंग केवल कर्म कोई मन अपनी होती के और संसार काम नहीं करता, उसको पाप नहीं लगता, मन में इच्छा कामना है कर्म नहीं करता है तो वो बंद जाता है, फल तो भी बच देते, तो वो कैसे होता है, निश्चाराम संतोष था, जो मिल जाए अपने आप उद्योग करने पर परीक्षा से किस मिल जाए उसमें संतोष है, भोजन थोड़ा मिल जाए जानो मिल जाए, जैसे कहा है चौबीस गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज, वे कहते हैं दुष्ट भू तुष्ट थी रहो, जो मिल जाए उसमें हजम तुष्ट रहता हूँ, जो मिल जाए परेशा से मन खतर भोजन ताकत खुदा हरना भी लूका सूखा टूका खुदा कुकरी तन को दही लगा इसको टूका डाल दे, किसी हरिपुर भूखती जाएगी भूसे नहीं। कुरुना अपनो थी सारी रंग केवल अंकर्म केवल निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता वो बंधता नहीं। आप न कृप ना अपने पापों का अपने सारा संतुष्ट बंधाती का राग द्वेष हर का शोक अनुकूल का बंधा इनसे अतीत हो गया इनका कोई असर नहीं। बीमत सर ईर्षा किसी से नहीं, ये मात्सर्य दोष है बड़ा विलक्षण है। मित्रों में आपस में भी ईर्षा हो जाती है, हमारा मित्र है अच्छा है घनिष्ठ कौन उसकी महिमा ज्यादा हो तो हमें चुपची है जरा वो मत्सर दोष होता है। इस मत्सर दोष से भी रहे थे बीमत सरा समय सिद्ध और असिद्ध हो जाए कार्य की सिद्धि हो जाए असिद्धि हो जाए। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है अंतकरण की शुद्धि हो जाए अथवा अंतकरण की शुद्धि न हो इसमें विश्राम है। ये कोई इच्छा नहीं की शुद्ध होना चाहिए। ये कर्मयोग का तत्व तो महाकाल ने योग स्तर गुरु कर्माणी पर शांकर भाष्य में लिखा समता हृदय तो ऐसे समय सिद्ध और असिद्ध ये तीन बार आया है। सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है समय सिद्ध और असिद्ध सिद्धि सिद्धि समूह भूत हुआ सिद्धि असिद्ध कभी समेगी ये बात करी तो वो कर्म योग सिद्ध हो जाता है उसका सिद्धि असिद्धि में कोई फर्क नहीं उसे समय सिद्ध आवश्यक कृपा फिर न बदी वो करके भी बंद होता नहीं। सिद्धि असिद्धि में समय जो हो जाए जैसा हो जाए उसे मस्त है कृपा फिर न निबद्ध थे करने के भी बंदता नहीं हो गत संग से मुक्त से अब ध्यान देना ऐसा तो गत संग है जिसकी आसक्ति नहीं करनी अगर मुक्त है इच्छा से कामना सबसे सबसा छोटा है छूटा हुआ है और ज्ञान अवश्य ज्ञान में जिसकी पूर्ण निष्ठा है पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बोध है ऐसा जिसको बोध हो गया है यज्ञ आए आसन तो कर्म यज्ञ लिए आसन करते यज्ञ क्या कल भी आया एक शिष्टा में गुरु जानते गुरु सनातन कल भी आया यज्ञ तो यज्ञ क्या के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति चलती रहे सब लोग धर्मात्मा बने रहे ये जो लोक संग्रह है इसका नाम है यज्ञ केवल लोगों के हित के लिए अपने उसने वो यज्ञ होता है। यज्ञ के कई तरह यज्ञों में विष्णु यज्ञ विष्णु का नाम है भगवान के लिए करे पर लोक संग्रह कर्म करे निर्लय करे समग्रम प्रवेलिये थे उसके कर्म संपूर्ण लीन हो जाते कोई कर्म बांधने वाला नहीं रहता सब कर्म अकर्म हो जाते कर्म या अकर्म ये कुछ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्म वो कर्म अब इसका वर्णन होगा कर्मों का वर्णन 32वें श्लोक तक ये यज्ञों का वर्णन होगा विशेष तरह से। तो यज्ञ आय आचरण था कर्म यज्ञ के लिए आचरण करेगी और अपने लिए नहीं सब कर्म लीन हो जाते कोई कर्म बनने वाला नहीं रहता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर अर्पण है वो अर्पण जिससे अर्पण किया जाए भोजन करें ये हाथ ही सुबह हो गया सुबह से ऐसे भोजन की आहुति दे दी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर पदार्थ हो गई ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नौ अहम वैश्वानर भूतवा और ब्रह्मणा होता हूँ अहंकार करने वाला भी ब्रह्म होते गंतम ब्रह्म कर्म समाधि ना उस ब्रह्म कर्म की समाधि रह जाए उसमें ठीक तल्लीन होता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जो कोई आसक्ति नहीं कामना नहीं इच्छा नहीं वासना नहीं तो जो नहीं होता वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दैव में अपरे योगी ना अपरे योगी ना और के योगी है वो दैव यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए बड़ी वैश्व देव आदि और भी देवताओं को जो जो पर्व आ जाए जो जो दिन आ जाए केवल कर्तव्य समझ करके उनके लिए काम करते हैं पर उपास होते और ब्रह्माग्नि प्रेम यज्ञ नहीं कई एक यज्ञ से ब्रह्म रूपी अग्नि मावन करते हैं मनु अपने आप को ब्रह्म के अर्पण करते ब्रह्म से अपने को अलग किंचित मात्र भी नहीं समझते वो ब्रह्म यज्ञ होता है। ब्रह्मार्पण भी होता है ये ब्रह्म यज्ञ है ब्रह्मग्ना यज्ञ श्रेष्ठा न संतो मुचिंत कर्म सर्व के विषय यज्ञ श्रेष्ठा में तो यार ब्रह्म सनातनम ये बात है। तो यज्ञ के लिए काम करते केवल श्रोत्रादि इंद्रियों में संयम, कई अन्य श्रोत्रादि इंद्रियों में संयम रूपी अग्नि करते हैं, मन इंद्रियों को वश में रखते हैं, ये भी एक यज्ञ है इंद्रियों को वश में करना। और दूसरे के शब्दादि जैसे अन्य इंद्रियादि रूपी इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द स्वरूप होम कर देते। होम का तात्पर्य क्या कि जो आहुति देते हैं तत्ल है जो है गिरी है खाक है इसको मिलाकर जो हव्य देते हैं वो सब अग्नि हो जाता है, अग्नि ईश्वर कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा अर्पण कर गया तो उसकी सत्ता ही नहीं रही दूसरी, वही हवन है। जब तक दूसरी सत्ता है तब तक हवन हुआ नहीं, अग्नि में हवन हो अग्नि के सिवा और कुछ न रह जाए वो हवन है। तो विषयों का सेवन करते हैं तो विषय बुद्धि नहीं रहती, वो विषयों का हवन होता है। इंद्रियों से सब विषयों का आगत वेश वियुक्त आत्मविषय विधाय प्रसाद मूर्ति से प्रसाद बुद्धि प्रतिष्ठित है राग द्वेष रहित विषयों का सेवन, वो विषय यज्ञ है विशेष सेवन करना, इंद्रियों अग्नि में विशेष सेवन करना। सब इंद्रिया सर्वानंदी कर्माने अब बताते समाधि, संपूर्ण इंद्रियों का कर्म और प्राण का कर्म आत्म संयम योगानु अपना संयम कर्म योग रूपी अग्नि में समाधि जगती ज्ञान दी भीतर में सच्चिदानंद ज्ञान स्वतः रहता चुप बैठे ज्ञान दीपते क्यों कहा कि नींद नहीं आनी, नींद आ जाती है यज्ञ नहीं होगा। एक सच्चिदानंद परमात्मा उनमें सब कर्म जितने गए इंद्रियों के कर्म है, मन बुद्धि का कर्म है, प्राण कर्म है, शरीर के दर क्रिया जो कर्म सब होम कर देते एक समाधि लग जाती है। आत्म संयम योग अपना संयम रूपी योग में अग्नि में भी होम कर देते हैं। अब बताते हैं कि द्रव्य ज्ञा तपो यज्ञ योग या कई द्रव्य कहते हैं मन दोनों दुनिया के हित के लिए प्याऊ लगा दी, बगीचा लगा दिया, भोजन का खत खोल दिया, इस तरह से दूसरों के लिए द्रव्य करते द्रव्य के द्वारा यज्ञ होता है। ये अपने कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं द्रव्य का तपो यज्ञ कई तपस्या यज्ञ करते हैं, अपने कुछ नहीं लेते, अपने सही है निर्वाह उसकी भी परवाह नहीं, जो उपजा उसमें वो तप करते तप रूपी यज्ञ तो यज्ञ योग यज्ञ पर कई योग यज्ञ करते योग जो सिचुएशन विरोध भी ले सकते है क्षमता भी ले सकते है योग का जो अर्थ वो योग अग्नि करते हैं। योग यज्ञ पर स्वाध्याय ज्ञान एक स्वाध्याय ज्ञान पाठ करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का मनन करते हैं, वो स्वाध्याय यज्ञ है। भगवान ने कहा है कि जो मेरे गीता का पाठ करता है उससे ज्ञान यज्ञ से मैं पूजन से रहा हूँ श्री राम सभी में ज्ञान यज्ञ परम तब ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। गीता का ठीक अर्थ होता है समान करते हुए पाठ करता है तो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूँ। साथ समझे वो ज्ञान यज्ञ से पूजित करता नहीं है, वो तो गीता का अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं उसका ज्ञान यज्ञ मान लेता हूँ भगवान के मैं पूजित हो जाता हूँ। जैसे पंडित के सामने बालक कोई कहे कोई पाठ करे तो बालक तो तोते की तरह करता है जानता नहीं, पर सुनने वाला जानता है ना कहते भाई बहुत बढ़िया सी बात बताई। ऐसे भगवान कहते हैं मैं तो ज्ञानी को मान लेता हूँ, उसका ज्ञान यज्ञ होगा, वो ज्ञान यज्ञ करता गीता का प्रेम से आदर से पाठ करके मस्त हो जाते उसे ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। एक बात हमने सुनी चैतन्य महाप्रभु थे इनके कई सत्संग थे उनमें एक आदमी गीता का पाठ करता था क्योंकि जब पाठ के मस्त हो जाता था तो पढ़े लिखे आदमी ने सुना कि ये तो शुद्ध उच्चारण नहीं करता गीता का अर्थ है ठीक जानता अर्थ तो दूर रहा शब्द भी ठीक उच्चारण नहीं करता अशुद्ध बोलता है। किसने कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने क्या करता है गीता का पाठ कर रहा गीता का अर्थ जानते ना महाराज गीता का अर्थ नहीं जानता तो क्या पाठ करते हो गदगद हो जाए प्रश्न हो जाए रोमांच हो जाए आंसू बह गीता का पाठ करे तू अर्थ नहीं जानते किस कारण होता है कि महाराज श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच आशा यानी वो भगवान बोल रहे अर्जुन पूछ रहे इससे इतना समझ आनंद आता है भगवान अपने प्यारे मित्र के साथ बात करते और वो संवाद मेरे को मिल गया मैं वो पढ़ रहा हूँ अर्जुन के वो भी पढ़ता हूँ भगवान के वो भी पढ़ता हूँ इस बार हमें आनंद आता है ये ज्ञान एक से पूजा होगी बोला ज्ञान है ही नहीं गीता का भी ज्ञान ही नहीं है ठीक है ज्ञान एक से पूजन करता है तो चेतना पूरेगा ठीक है अच्छा है ऐसा ज्ञान यज्ञ नाम श्यामती ज्ञान एक से मैं पूजन हो जाता हूँ मेरी बुद्धि ऐसी हो जाती वो शायद जाने न जाने समझे न समझे पर जो प्रेम से गीता का पाठ करता है तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है बड़ा अच्छा लगता है गीता का पाठ करता है ना इस पर योग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान है वेदों का शास्त्रों का वेदों का शास्त्रों का पठन करता है नाम जप करता है कीर्तन करता है भगवान के भजन में मस्त रहता है भगवान के से बड़ा यज्ञ है तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान योग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ उसे मैं पूजित हो जाता हूँ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या ये तो संस्कृत था केव यति लोग संन्यासी संस्कृत व्रता ये अहिंसा सत्य हस्ते ब्रह्म शरीर प्रज्ञा हवा ये यम नियमों का पालन करते हैं पूजित व्रत है उनके सब इंद्रियों का मन का सब संयम स्वचाय इसी प्रकार नियम यम और नियमों का पालन करते हैं स्वाध्याय संस्कृत व्रता है अच्छी प्रयोग करने वाले ये ऐसा ये करते हैं अपाने जुबती प्राणम और प्राणे पान सा परे ये प्राणायाम अपान जो होती प्राणम प्राण का अपान गमन करे ऐसे रेचक को पूर्व है पूर्व करता है तो अपान में प्राण गमन करता है रेचक करता है विश्व में पूर्व करता है तो अपान में प्राण का आह्वान है और पूर्व करता है वो प्राण में अपान का आह्वान है और प्राणापान प्राणापान समझते दूसरी प्राणापान गति प्राणापान गति करके ये होगा कुंभक प्राण का आना और प्राण का जाना और प्राण का रुकना ये प्राणायाम रूपी योग यज्ञ है ऐसा प्राणायाम रूपी प्राणायाम पारायण प्राणायाम पारायण ऐसा करते हैं इसके सिवा दूसरे कई ऐसे ये चतुर्थ प्राणायाम करते हो ये पूरक कुंभक और रेचक ये बताया अब चौथा प्राणायाम क्या अपने नेता आधा आहार नियत करते हैं थोड़ा तुम प्राण रोकना है तो आहार आदि थोड़ा करने से वो ज्यादा खा रहे रुकेगा नहीं प्राण प्राणायाम प्राण जो होती है प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं सर्वे पियते यज्ञ सब जितने के कोई 12 मानते हैं कोई 14 मानते हैं यज्ञ सर्वे से यज्ञ विदा वे सब यज्ञ जानने वाले हैं सब यज्ञ को जानने वाले हैं सर्वे से यज्ञ विदा यज्ञ शब्द का अनुसार यज्ञों के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए ऐसे वे पुरुष यज्ञ करते हैं यज्ञ शेष यहाँ के ब्रह्म सनातन यज्ञ शेष भोजन करते हैं और परमात्मा प्राप्त होते हैं तीसरे में यज्ञ शेष चिंतित सर्व के लिए भी वहां भी यज्ञ शेष भोजन करे मगर इस यज्ञ में से कोई सा यज्ञ करता है और वहां बलिवेश यज्ञ करता है वो पवित्र यज्ञ पाठन करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं यहाँ जितने साधन बनाए यहाँ शेष यज्ञ क्या होगा शेष यज्ञ हो तत्व ज्ञान इनसे तत्व ज्ञान वही भोजन है यहाँ उनके ये भोजन करने वाले ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं नारायण लोगों से यज्ञ से कुतुम न कुछ अयज्ञ जो यज्ञ नहीं करता उसका पर लोग नहीं होते ये लोग विषित नहीं होता यज्ञ नहीं करता खाना पीना करते हैं पशुओं की तरह वो यज्ञ नहीं है वो तो पशुओं की तरह खाना पीना है लोग कहते खाना खाओ तो खाना खाते हो यज्ञ नहीं भगवान के लिए होता है यज्ञ होता है भगवान का प्रसाद होता है प्रसाद खाते है और खाना नहीं खाते महान अशुद्ध चीज वे खाना खाते और ये विशेषता ये विशेष भोजन करते हैं। वहां भी गए भूंजते थे पगम पाप ये पसंद अपने लिए पकाते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। इस बात से वो कुछ नहीं ये लोग सिद्ध नहीं होगा पर लोग कैसे हुआ एवं बहुविधाय भगवान कहते हैं इस प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में बहुत बताए उपासना है ऐसी उपासना वेदों में बहुत बताई वे सब के सब यज्ञ है। भगवान ने 12 से 14 यज्ञ बताए हैं 12 ऐसे वाणी में वेदों की वाणी में बहुत बताए सभी से यज्ञ वेदों वे सब के सब यज्ञ जानने वाले हैं। यज्ञ सब से कलमसा यज्ञ जिनका कलमस नष्ट हो गया है एवं बोधाई विद्या प्रणु रमजान विधान सराम सब कर्म जन्य है ऐसा जानने से तू मुक्त हो जाएगा। ये बात कही भगवान अब पूरा हो गया कर्मों का प्रकार और चलेगा गाड़ी स्वाध्याय ज्ञान योग्य आगाड़ी भी करेंगे। नारायण 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 नारायण।